समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सभी श्रोताओं को नाग पंचमी की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। AIR FM गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों को मनोज और मेरी सहयोगी नीना अराकल मैथ्यू का नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन।
हेलो मनोज एंड डियर लिसनर्स, विश यू अ रोरिंग ब्राइट मॉर्निंग एज वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे टुडे। एंड मनोज, इट्स ग्रेट टू हैव द टाइगर ऑन द स्पॉटलाइट टुडे। A very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 29th of July 2025.
नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा में आज फिर ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक अभियान पर कल चर्चा आरंभ की। चर्चा में भाग लेते हुए विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए नई शुरुआत का संकेत है। उन्होंने 5 बिंदुओं पर आधारित दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि ये भारत के इस रवैये को परिभाषित करता है कि आतंकियों को छद्म रूप में नहीं देखा जाएगा। सीमा पार आतंकवाद को अब समुचित कार्रवाई का सामना करना होगा। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। बातचीत अब केवल आतंकवाद पर ही होगी। भारत परमाणु धमकी सहन नहीं करेगा और अच्छे पड़ोसी संबंध आतंकवाद के साथ नहीं फल फूल सकते।
The challenge of cross-border terrorism continues, but Operation Sindoor marks a new phase. There is now a new normal. The new normal has 5 points. 1, terrorists will not be treated as proxies. 2, cross-border terrorism will get an appropriate response. 3, terror and talks are not possible together. There will only be talks on terror. 4, not yielding to nuclear blackmail. And finally, terror and good neighborliness cannot coexist. Blood and water cannot flow together. This is our position.
डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान से सीमा पार से आतंकवाद के निरंतर खतरे से निपटने के नए चरण की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई दंडात्मक कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्रेज्ड द स्पीचेस डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर इन द लोकसभा यस्टरडे। इन अ सीरीज ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट, द प्राइम मिनिस्टर टर्म्ड द स्पीचेस आउटस्टैंडिंग एंड इनसाइटफुल। Prime Minister Modi said in his speech, Dr. Jayashankar highlighted how the world has clearly heard India's perspective on fighting the menace of terrorism through Operation Sindoor. On the speech given by Defence Minister, he said, Rajnath Singh has given an insightful perspective on the success of India's security apparatus and the courage of our armed forces in Operation Sindoor.
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले के हरवान इलाके में जंगलों में सेना के साथ मुठभेड़ में 3 अज्ञात आतंकी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने बताया कि मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है।
The National Education Policy 2020 completes its 5 years today. The launch of NEP laid out an ambitious roadmap to transform India's schools into spaces where learning is no longer confined to textbooks, marks or memorization. A correspondent reports that over the past 5 years, the policy has laid the foundation for a more inclusive, learner-focused and future-ready education system in India.
National Education Policy 2020's impact is visible across every stage of learning through meaningful reforms. Initiatives like Nipun Bharat and Vidya Pravesh have benefited over 4.2 crore students across around 9 lakh schools. Indian Sign Language is now a subject with over 1,000 ISL videos and talking books developed. The 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure and National Curriculum Framework for School Education 2023 promote experiential and competency-based learning. CBSE board exams now include 50% competency-based questions and subjects are offered at 2 levels. Over 4 lakh teachers have also been trained under the Nishtha Teacher Training Program. Other initiatives including Bal Vatikas, Jadui Pitara and Prashast app have further promoted multilingual, inclusive and holistic education. Adarsh for Akashvani News, Delhi.
जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से श्रद्धालुओं का 27वां जत्था आज सुबह कश्मीर घाटी में पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। 61 वाहनों के इस जत्थे में 1,490 तीर्थयात्री शामिल है। इन यात्रियों में से 327 श्रद्धालु बालतल से और 1,163 पहलगाम आधार शिविर से पवित्र गुफा के लिए यात्रा करेंगे।
U.S. President Donald Trump has presented a new, shorter deadline of 10 or 12 days for Russia to agree to a ceasefire over the war in Ukraine. The U.S. President said there was no reason in waiting any longer as no progress towards peace had been made. 2 weeks ago, Trump said President Vladimir Putin has 50 days to the end of the war or Russia would face severe tariffs. Speaking at a news conference in Scotland, Trump said he would confirm the new deadline on Tuesday but reiterated the threat to impose sanctions and secondary tariffs on Moscow. Earlier in July, he said those would amount to 100% tax imposed on any country that trades with Russia.
Sanyukt Rashtra Mahasachiv एंटोनियो गुतरश ने चेतावनी दी है कि इजराइल फलिस्तीन संघर्ष नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। कल न्यूयॉर्क में शांति सम्मेलन में उन्होंने संघर्ष के बीच तत्कालिक और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गुतरश ने कहा कि दोनों देशों के बीच समाधान का रास्ता टूट रहा है और इसे जल्द ही बदलना होगा। उन्होंने फलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने के लिए फ्रांस और सऊदी अरब की प्रशंसा की। श्री गुतरश ने वैश्विक नेताओं से अपील की है कि वे इस मुद्दे को लेकर चर्चा का स्थान न बनने दें।
Divya Deshmukh became the first Indian to win the FIDE Women's World Cup title after defeating fellow Indian Koneru Hampi in Batumi, Georgia. The match lasted for 3 days and was decided through tie breaks, with Divya emerging victorious with a score of 2.5-1.5. We have a report.
With this achievement, Divya joins Koneru Hampi, Dronavali Harika and R. Vishali as the fourth Indian woman to become a grandmaster. This victory also made her the 88th person overall to reach this milestone. In addition to winning the World Cup, Divya's performance earned her a spot in the 2026 Candidates Tournament, where players will compete for the chance to challenge the women's world champion, Zhu Wenjun of China. Divya's success adds to the recent achievements of Indian chess players, with notable performances from players like world champion D. Kukesh, R. Pragnananda and Arjun Erigasi. After the win, an emotional Divya said fate played a role in the Grandmaster title being awarded to her in this way.
I think it was fate, me getting the Grandmaster title this way, because before this I didn't even have one nom, and now before this tournament I was thinking, oh, where can I get my nom, and now I'm a Grandmaster. So.
Swati Rakheja from Sports Desk for Akashvani News.
ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अब महानगरों के समाचार।
स्टार्टिंग विद चेन्नई, About 100 cosmologists and researchers from renowned institutions across the country have gathered at the Institute of Mathematical Science in the city to discuss the evolution of the universe up to August 1. The first edition of Cosmic Connections will explore the universe from its earliest moments to its evolution into the large-scale structure observed today. Dheeraj Kumar Hajra, faculty member at IMSC and convener of the meeting, said that the main aim of the event is to bring together researchers working in cosmology across the country. It will also provide a platform for early career researchers and students. The five-day program will feature 70 full-length talks on topics such as inflation, primordial gravitational waves, the cosmic microwave background, quantum fluctuations and galaxy evolution studies using instruments such as the James Webb Space Telescope. More from Chennai, the Postal Department has announced the rollout of the next generation APT application, marking a significant leap forward in its journey towards digital excellence and nation building. As part of this transformative initiative, the upgraded system will be implemented across all post offices in the Chennai City North Division starting from the 4th of next month to ensure a seamless and secure transition to this advanced digital platform. A planned downtime has been scheduled for the 2nd of August.
अब दिल्ली की खबर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल वित्त व्यय समिति की बैठक में निर्माणाधीन बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 की समीक्षा की। इस बैठक में रोड निर्माण के दौरान हुई अनियमितताओं और ठेकेदार कंपनी को 175 करोड़ रुपए का भुगतान करने की जांच को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से कराने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जांच में परियोजना किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी और इसे तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उच्च स्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा के अलावा संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस परियोजना में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस परियोजना के लिए बजट की कमी नहीं होने देगी। बैठक के बाद श्रीमती गुप्ता ने जानकारी दी कि ये परियोजना भी पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार और घोर लापरवाही का एक और उदाहरण है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को अक्टूबर वर्ष 2017 में पूरा हो जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से ये परियोजना पिछड़ती गई। दिल्ली की एक और खबर। उप महापौर जय भगवान यादव ने कल नजफगढ़ क्षेत्र के द्वारका के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और नागरिक समस्याओं का जायजा लिया। श्री यादव ने बागडोला गांव, द्वारका सेक्टर 8 और 9 का निरीक्षण कर इन क्षेत्रों में खराब सड़कें, जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को टूटी नालियों और सड़कों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
Moving on to Bengaluru, Karnataka Home Minister G. Parameshwara has urged state police officers to take drug-related activities seriously and initiate strict action. The statement follows a raid conducted by the Maharashtra police on an MDMA drug manufacturing facility in Mysuru on Saturday. A large quantity of MDMA was seized and 4 individuals were arrested during the operation. Following the raid, the inspector of the Narasimha Raja police station in Mysuru was suspended. The Home Minister acknowledged that the presence of such a facility in the state represents a lapse on the part of the local police. He opined that if the jurisdictional police are not aware of such activities, it shows lapses.
मुंबई, महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अपनी स्वयं की ऐप आधारित परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है। इस ऐप का नाम जय महाराष्ट्र, महाराइड, महायात्री या महागो रखा जा सकता है। ये ऐप ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ई बाइक बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल में महाराष्ट्र परिवहन प्रौद्योगिकी संस्थान और मित्रा जैसे संस्थान शामिल होंगे। युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए वाहन खरीद के लिए मुंबई बैंक के माध्यम से 10% ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें सरकारी निगमों से सब्सिडी मिलने पर प्रभावी दर लगभग शून्य हो जाएगी। ऐप का नीतिगत ढांचा अपने अंतिम चरण में है और केंद्र के एग्रीगेटर दिशा निर्देशों का पालन करता है। उन्होंने कहा कि परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए 5 अगस्त को राज्य सचिवालय में एक महत्वपूर्ण योजना बैठक निर्धारित है। उन्होंने कहा कि ये ऐप पारदर्शिता लाएगा और निजी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करेगा, जिससे ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को उचित लाभ सुनिश्चित होगा।
And now news from Hyderabad. The Telangana State Cabinet has decided to meet President Draupadi Murmu next month to urge her to give assent to 2 bills passed by the State Assembly to increase reservation for backward classes to 42% in education, employment and local bodies. Ministers, MPs from the ruling Congress party and its allies will be meeting the President to submit a memorandum.
अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। कोलकाता मेट्रो की ब्लू लाइन के कवि सुभाष स्टेशन के अप प्लेटफॉर्म पर दरारें पड़ गई हैं। कोलकाता मेट्रो रेलवे प्राधिकरण दक्षिणेश्वर स्टेशन से शहीद खुदीराम स्टेशन तक मेट्रो सेवाएं चला रहा है। मेट्रो प्राधिकरण की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में मीडिया को बताया गया है कि बारिश के कारण ये दरारें पड़ गई हैं। मरम्मत कार्य जारी है। अगली सूचना तक ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवाएं दक्षिणेश्वर से शहीद खुदीराम स्टेशन तक ही चलेंगी। बात करते हैं महानगरों के मौसम की। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सामान्यतः बादल छाए रहने तथा मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आम तौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और बाकी महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं नीना से।
Yes, Manoj. Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between minimum of 24 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius.
और अब आज का इतिहास जानते हैं। आज 29 जुलाई है। देश और दुनिया के इतिहास में 29 जुलाई कई कारणों से महत्वपूर्ण है। 1876 में आज ही के दिन भारत में विज्ञान संगठन की स्थापना की गई।
It is the oldest institute in India devoted to pursuit of fundamental research in the frontier areas of basic sciences. And Manoj, before we go forward, on this day we celebrate International Tiger Day, also known as Global Tiger Day. It's celebrated every year on July 29 to raise awareness about the alarming decline in the global tiger population. The observance serves as a reminder of the urgent need to protect these majestic big cats and preserve their natural habitats. Beyond its beauty and power, the tiger is also a symbol of healthy ecosystem. As the famous saying goes, where tigers thrive, it is a sign that the ecosystem is healthy. The global celebration of International Tiger Day brings together individuals, governments and organizations to advocate for stronger conservation efforts. The goal is to build a worldwide framework dedicated to protecting tigers and the environments they depend on. India, home to the largest population of world tigers, launched Project Tiger in 1973, a pioneering initiative aimed at saving the species from extinction. What began with just 9 tiger reserves has now expanded to 58 reserves across the country, marking significant progress in tiger conservation.
आज ही के दिन 1980 में भारत ने मॉस्को ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता।
In 1884, Society of Independent Artists, founded in Paris by Albert Dubois, Pelé, Odilon Redon, Georges Seurat and Paul Signac.
2000 में आज ही के दिन अमेरिका ने यूक्रेनी रॉकेट की मदद से पामनसैट 9 नामक संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया।
In 1905, Taft-Kastura agreement was signed between U.S. Secretary of War William Howard Taft and Japanese Prime Minister Kasturo Taro. The agreement gave Japan a free hand in Korea, while the United States received assurance of non-interference in the Philippines.
2006 में आज ही के दिन श्रीलंका के बल्लेबाज माहेला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने 624 रनों की भागीदारी का टेस्ट क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाया।
In 1911, Mohan Bagan became the first Indian football team to win the IFA Shield.
और अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि या फिर जन्म दिवस है।
Today we remember Vincent Willem van Gogh was a Dutch post-impressionist painter who is among the most famous and influential figures in the history of Western art. In just over a decade, he created about 2,100 artworks, including around 860 oil paintings, most of which from the last 2 years of his life. They include landscapes, still lifes, portraits and self-portraits, and are characterized by bold colors and dramatic, impulsive and expressive brushwork that contributed to the foundations of modern art. Today, Van Gogh's works are among the world's most expensive paintings to have ever sold at auction, and his legacy is honored by a museum in his name, the Van Gogh Museum in Amsterdam, which holds the world's largest collection of his paintings and drawings.
आज पुण्यतिथि है वसुंधरा कोमकली की। वे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थीं। वे भारत के प्रसिद्ध संगीत घराने ग्वालियर घराने के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थीं। वसुंधरा कोमकली को वसुंधरा ताई के नाम से भी जाना जाता है। वे बहुत ही सुघड़ गायिका थीं। उन्होंने पंडित कुमार गंधर्व की गायन शैली को आगे बढ़ाया था और देवास का नाम रोशन किया। वर्ष 2009 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया था।
Martina Maria McBride is an American country music singer, songwriter, and record producer. She is known for her soprano singing range and her country pop material. McBride signed to RCA Records in 1991 and made her debut the following year as a neo-traditionalist country singer with the single The Time Has Come. Over time, she developed a pop-styled crossover sound similar to that of Shania Twain and Faith Hill, and had a string of major hit singles on the Billboard Country chart as well as occasionally on the Adult Contemporary chart. Here's this one for The Girls by Martina.
आज पुण्यतिथि है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री व स्वाधीनता सेनानी थे। वे गरीबों व दलितों के संरक्षक माने जाते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर काफी जोर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय सहित अनेक महिला विद्यालयों की स्थापना करवाई तथा वर्ष 1848 में वैताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना का भी प्रकाशन किया। नैतिक मूल्यों के संरक्षक और शिक्षाविद विद्यासागर जी का मानना था कि अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के ज्ञान का समन्वय करके ही भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं की श्रेष्ठता को हासिल किया जा सकता है। संकट के समय में भी वे कभी अपने सत्य के मार्ग से नहीं डिगे। उनके जीवन से जुड़े अनेक प्रेरक प्रसंग आज भी युवा वर्ग को प्रेरणा प्रदान करते हैं।
Rodney Roy Jerkins, also known as Dark Child, is an American record producer, rapper, composer and songwriter. He has collaborated with a broad range of popular artists including Brandy, Janet Jackson, Whitney Houston, Michael Jackson, Beyoncé, Jennifer Lopez, Toni Braxton, Britney Spears, Lady Gaga, Justin Bieber and many more. Jerkins has won multiple Grammy Awards. Here's the song, As Long As You Love Me. Jerkins is a credited as a composer, lyricist, producer and mixing engineer for the track. He also contributed to the song's arrangement and vocal production. As Long As You Love Me.
Fighting every second of the day for your dreams, girl. I'll be your hover.
आज पुण्यतिथि है जॉनी वॉकर की। उनका जन्म 15 मई 1923 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे भारत के एक सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे। उनका असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। जॉनी वॉकर की जो आवाज दर्शक सुनते थे वो आवाज उनकी बनाई हुई थी। उनकी वास्तविक आवाज भारी थी। उनकी मुख्य फिल्में हैं 14वीं का चांद, नया दौर, मधुमती, प्रतिज्ञा, शिकार आदि। उन्हें 1959 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार फिल्म मधुमती के लिए दिया गया था।
दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिल मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल।
Vivian Patricia Scalfia, born on 29 July, is an American singer, songwriter and guitarist. Scalfia has been a member of the E Street Band since 1984 and has been married to Bruce Springsteen since 1991. In 2014, Scalfia was inducted into Rock and Roll Hall of Fame as a member of the E Street. Let's listen to this song, Looking for Elvis.
I'm just looking for some inspiration, looking for something to rock my soul. I'm looking for a brand new destination. I'm looking for Elvis down in Memphis Road. I'm looking for Elvis.
आज जन्मदिन है संजय दत्त का। उनका जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म रेशमा और शेरा में 1972 में पदार्पण किया।
आते, 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 जाते 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 मुझे दूर ला गई। आते 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 तेरी याद आ गई। जाते 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 मुझे दूर ला गई।
उसका नाम बहादुर, इसका नाम प्रताप सिंह, इसका नाम शेरा और वगैरह वगैरह। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे नाम बड़े मर्दाने रखे, शायद इस उम्मीद में कि तुम लोग मर्द बनो।
मगर अपने आप से पूछो, क्या ये मर्दानगी है? एक निहत्ते आदमी के लिए छह छह आदमी, और वो भी हथियारों के साथ।
चुप, मैं तेरी जबान खींच लूंगा।
चुप।
जिस आदमी ने मेरी तरफ पहला कदम बढ़ाया, मुझ पर पहला हाथ उठाया।
आज जन्मदिन है अनूप जलोटा का। उनका जन्म 29 जुलाई 1953 को नैनीताल, उत्तराखंड में हुआ था। वे एक भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता है। उन्हें भजन सम्राट के नाम से जाना जाता है।
सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया
और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।